आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी, एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला। आप स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, फिर 1972 में जब आपने मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम पास की, तो यह जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, और इसलिए आरंभ में सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर रहकर अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद 14 वर्षों तक लगातार आप भावनगर सबछोन इंचार्ज के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं देते रहे। उसके बाद 1993 में जब ज्ञानसरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको वहां बिठाया और वहां 17 वर्षों तक रहकर आपने वहां का रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि आदि बहुत ही सुचारू रूप से चलाया। फिर वर्ष 2010-11 के आसपास नीचे शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया, बाबा ने आपको वहां बिठाया, तो वर्तमान में शांतिवन परिसर में रहते हुए आप हेडक्वार्टर के सभी परिसरों में अपनी सेवाएं देते हैं। मुख्य रूप से आप राजयोग प्रशिक्षिका हैं, भट्टी की प्रशिक्षिका हैं, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के ट्रेनर हैं, और साथ साथ जो हमारा बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, और साथ साथ हमारे पास नीचे कुमारियों की ट्रेनिंग चलती है, उसकी भी कार्यप्रणाली आपके ही कंधों पर है। पूरे भारत भर में तो क्या, विदेश में भी आप भ्रमण करके आए हैं, आए दिन भारत में तो आपको निमंत्रण मिलते रहते हैं, कहीं शिविर कराने तो कहीं भट्टियां कराने, और कहीं एसएमएल कराने तो कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम्स करने के लिए आप जाते रहते हैं। मुरली का बहुत गहरा चिंतन करते हैं, मुरली का एक एक महावाक्य जैसे कि जीवन में कैसे प्रैक्टिकल स्वरूप देना है, वो स्वयं भी उसको धारण करते हैं और सबके सामने रखकर पूरे ब्राह्मण परिवार को भी लाभान्वित करते हैं। तो आज जैसे कल भी हम कह रहे थे, ब्राह्मण जीवन का पहला पाठ कौन सा है? आत्म अभिमानी बनना। पहला पाठ ही हमारा क्या है? अंतिम पाठ है। और कल जब हमने पूछा, कोई दिल पर हाथ रखकर कह सकता है कि इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और 24 घंटा हमारी आत्माभिमानी स्थिति रहती है, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो अवश्य ही इसी पाठ को हमें बहुत गहराई से समझना होगा और जीवन में धारण करना होगा। तो उसी गहराई को समझेंगे दीदी से, आत्म अभिमानी स्थिति कैसे बनानी है। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। मधुबन की पावन भूमि, तपोभूमि, वरदानी भूमि में तपस्या का आनंद आ रहा है सबको। अच्छा लग रहा है? जिस भूमि पर प्यारे ब्रह्मा बाबा ने, मिठी मम्मा ने और हमारी दादियों ने तपस्या की, यहाँ का वायुमंडल ऐसा है जो हम नेचुरल योगी बन सकते हैं। अपने आप ही बाबा याद रहता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये भी अच्छा मौका आप सबको मिला है। हम सभी ने बाबा का सत्य ज्ञान प्राप्त होते ही तपस्या का मार्ग अपनाया है। अब हम भोग मार्ग के राही नहीं हैं, अब हम योग मार्ग के राही। ये पक्का है ना सबको, हाँ, कि हम सब ने भोग मार्ग छोड़ दिया है, योग मार्ग के राही हम बने हैं। हमारी तपस्या भल प्रवृत्ति मार्ग की है, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र और योगी बनना है। दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है, पर बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति से आज लाखों गृहस्थी भाई बहने कमल फूल समान जीवन जी रहे। तो ये भी कितनी बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं। बाकी सभी धर्म संप्रदाय मठ पंथ समाज जिस बात पर आकर अटक गए वो पवित्रता की बात है। बाकी सब कुछ वो सिखाते हैं, दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सच बोलो, झूठ न बोलो, प्रेम से बोलो, बाकी सभी बातें वो सिखाते हैं, पर कौन सी बात नहीं करते हैं? पवित्र बनो, योगी बनो। वहां आकर सब अटक गए, बाबा ने वहां से शुरू किया। पवित्रता से हमारा कार्य शुरू हुआ। बिना पवित्रता आप योगी बन नहीं सकते, क्योंकि तपस्या में पहली तपस्या ही है देहभान को भूलना। देहभान से न्यारा रहना, तो जब खुद के देह को भूलना है तो औरों के देह को भोगने की बात ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र मन बाबा की याद में लग सकता है। मन में या तो राम रहेंगे या काम रहेगा। तो हम सभी ने मन में किसको बसाया? राम को बसाया, निराकार राम को बसाया है, शुद्ध बुद्धि ज्ञान को धारण कर सकती। बाबा कहते हैं ना कि शेरणी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, परमात्म ज्ञान को धारण करने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए, सतो प्रधान बुद्धि चाहिए। इसलिए पवित्रता हमारे जीवन का फाउंडेशन है। बाबा हमेशा कहते हैं पहले बी होली then be yogi. Pavitra man buddhi hi yog laga sakte. Sada pavan baba se yog lagana hai. To hamare man vachan karma bhi shuddh chahiye, pavitra chahiye. आज भी बाबा ने कहा ना कि किसी ने बाबा को कहा कि क्यों नहीं क्रोध को सबसे ज्यादा तीखा समझा जाए, परंतु बाबा ने क्या कहा, काम महाशत्रु है, काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। बाबा कहते काम ने तो सब काम तमाम कर दिए, सारी दुनिया ही भ्रष्ट गंदी बन गई। चारों ओर आप देख रहे हैं, समय कौन सा आ गया है, हरेक के मन विकारी बन गए, बिल्कुल पतित भ्रष्ट बन गए। आज कोई संबंध सलामत नहीं रहा है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि बाबा ने हमें अपना बनाकर योगी बना दिया। पसंद है ना सबको ये जीवन, हाँ, कि मुश्किल लगता है, पसंद है सबको, बल्कि हम कहेंगे कि हमारा सही जीवन अब बना है। जब से बाबा के बने हैं तब से हमारा सच्चा जीवन बना है, उससे पहले तो कोई जीवन ही नहीं था। दुनिया में भौतिकता में विकारों में व्यसनों में तेरी मेरी में व्यर्थ में उसी में लगे हुए थे, कोई जीवन सही नहीं था। आत्मा में कोई उमंग उत्साह हिम्मत शक्ति नहीं थी। इसी को बाबा कहते हैं सब मरे हुए थे। इंसान जी रहा है पर जीवन में अगर खुशी नहीं, उमंग उत्साह नहीं, हिम्मत नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, मरा हुआ ही कहेंगे ना। तो हमारे जीवन ऐसे ही थे, बात बात में कदम कदम पर हर्ट होते रहते थे, दुखी होते रहते थे। अब ज्ञान से कितनी शक्ति आ गई, कोई भी बात आती है, परिस्थिति आती है, पर हम दुखी नहीं हो। लोग दुखी होते हैं पर वैरागी नहीं बनते। हम दुखी नहीं होते हैं, हम वैरागी बन गए कि भाई इसमें कोई दम नहीं है, अब वहां से बुद्धि हटाओ। बाबा ने हमें नई दुनिया स्थापन करने में लगा दिया। तो हम सब गृहस्थ में रहते हुए भी बेहद के वैरागी हैं, बेहद के सन्यासी हैं, बेहद के तपस्वी हैं, ये याद रखना है। उठते बैठते चलते फिरते घर गृहस्थी के कामकाज करते हुए हमें ये पक्का रहे कि मैं गृहस्थी नहीं हूं। अब हम निमित्त है, बाबा मालिक है। हम समझते थे मेरा परिवार मेरे बच्चे, परंतु अब समझ में आ गया कि ये तो सब ओरिजिनली बाबा के बच्चे हैं। इस जन्म में हम सिर्फ निमित्त है, इसलिए ये याद रहे हम योगी हैं, तपस्वी हैं, बेहद के वैरागी हैं, ये याद रहे। तो हमारे से ग्रस्तीपन की जो बांस है वो निकल जाएगी। हमें कोई गृहस्थी ना समझे, हम योगी हैं। जितने आप कमल फूल समान रहेंगे, डिटैचमेंट आप में रहेगी, उतना योगीपन की भासना हमसे आएगी। योगी मीन्स कमल, हस्त कमल, मुख कमल, चरण कमल, नैन कमल, हर कर्मेंद्रिय हमारी डिटैच, कमल फूल समान। ये हमारी तपस्या है। हम तपस्या से ये पाना चाहते हैं कि हमारे अंदर इंद्रियों का कोई रस ना हो, देखने का रस, कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, देखने का रस। हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, पर आत्मा को आदत पड़ गई अनावश्यक बातों में माथा मारना, ये अटैचमेंट, व्यर्थ देखने का रस। आजकल मोबाइल एक और अटैचमेंट आ गया, उसमें भी अटैच नहीं होना है। हमारे लिए वो भी, जहां अटैचमेंट है वो डिस्टर्बेंस है, मोह क्यों खतरनाक है, उनका स्वरूप तो मीठा है बहुत। भाई क्रोध करने वाला पसंद नहीं आएगा, लोभ लालच वाला दूसरे को दुख देता है, अन्याय करता है, लोभ लालच से हड़प लेता है, वो भी दुख देने वाला है। मोह का स्वरूप मीठा लगता है पर बहुत खतरनाक, क्योंकि जब हम मोह में फंसे हैं, अटैच है कहीं भी, हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते, भगवान का प्यार नहीं पा सकते, ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। क्रोध करने वालों को आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा। आप गुस्से वाले हैं, घर में आएंगे, बीवी बच्चे दूसरे कमरे में चले जाएंगे, कहीं बरस ना पड़े, कहीं गुस्सा ना कर दे, आपसे दूर रहेंगे हर कोई। भाई बहने कहेंगे, दीदी हम अकेले सेवा कर लेंगे पर हम इनके साथ नहीं करेंगे, बहुत गुस्सा करते। तो गुस्सा करने वाले को आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा, पर मोह में फंसे को तो भगवान का प्यार नहीं मिलेगा। उसकी बुद्धि देहधारी में देह संबंध में फंस जाती है, वो उनकी बुद्धि ऊपर उड़ नहीं सकती है, बाबा तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए विकार विकार है, फिर काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो या अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, वैर, द्वेष, हम ये नहीं कह सकते कि काम क्रोध खराब है बाकी तो अच्छे हैं, ऐसा कहेंगे नहीं। हर विकार आत्मा को गिराने वाला है, इसलिए हम सभी ने लक्ष्य बनाया है इस जन्म में हमें योग तपस्या से विकारों को खत्म करना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हमें नए कोई विकर्म नहीं करने, किए हुए विकर्मों से बने हुए हिसाब चुका रहे। हर एक को अनुभव है ना कैसे कैसे हिसाब किताब आते, किसी को शरीर के आते, किसी को मन के आते, किसी को धन के, संबंध के, प्रकृति के बनाए हुए हिसाब किताब चुकाने में दम निकल रहा है। तो हम नए विकर्म नहीं करेंगे, ये पक्का रखना कि मुझे नया कोई पाप अब नहीं करना है, क्योंकि अब तो इस पाप का हिसाब क्या बनेगा, एक का 100 गुना, कितनी बड़ा हिसाब बन जाएगा। क्योंकि बाबा ने इतना ज्ञानी योगी बनाया तो ऐसी ज्ञानी योगी आत्मा से सबकी अपेक्षा क्या होगी। भाई कोई अनपढ़ गंवार है ऐसे वैसे शब्द बोल देता है, पर कोई पढ़ा लिखा बोले तो लोग कहेंगे ना, भाई तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम्हारे में तो बोलने की मैनर्स चाहिए। चलो ये बेचारा अनपढ़ है, नहीं गांव का है, नहीं पढ़ा है, पर तुम तो पढ़े लिखे हो ना। हम कौन है, खुद खुद को याद कराओ रोज, हम सत्य ज्ञानी आत्माएं, साक्षात भगवान रोज हमें पढ़ाते हैं, हर बात का सत्य बाबा बताते हैं। कल परसों बाबा ने कहा ना, मैं अगम निगम के भेद खोल के सुनाता हूं तुम। हमारे लिए ज्ञान ऐसी एक भी बात नहीं है जिसका सत्य ज्ञान सही समझ हमारे पास ना हो, इतना बाबा ने ज्ञान हमें दिया है। अब आवश्यकता है अभ्यास करने, हमें कुछ ढूंढना नहीं है, हमें कहीं भटकना नहीं है, हमें सत्य मिल चुका है। परम सत्य बाबा ने सारे ही सनातन सत्यों का ज्ञान दे दिया है। आधा कल्प भक्ति में सारी मेहनत कौन सी की? ढूंढने की, भटकने। आखिर भगवान कौन है, हम कौन है, ये दुनिया क्या है? पचासों मते हो गई, इंसान मुंझ गया। अब हमारा सौभाग्य है कि हमें अब भटकना नहीं। संपूर्ण सत्य ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया है। नए नए तरीके से ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभवों से विस्तार पूर्वक रोज मुरली में समझाया है। तैतीस वर्ष साकार बाबा की मुरलियां चली, ज्ञान का हर सत्य नए नए तरीके से विस्तार पूर्वक समझाया है और व्यावहारिक जीवन की हर धारणा बाबा ने बताई है। इतना कौन समझाएगा? शुक्रिया करते हो बाबा का? हाँ, इतनी मेहनत कौन करेगा? पचास वर्ष 1969 से 2017 तक अव्यक्त बाप दादा ने अपनी संपूर्णता की स्टेज से संपूर्ण बनने का हर मार्गदर्शन बताया। वो मुरलियां, अव्यक्त वाणियां आप स्टडी करते होंगे। एक पवित्र योगी ब्राह्मण को संपूर्ण कर्मातीत बनना है तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, वो बाबा की अव्यक्त मुरलियों में बताया। बल्कि कई साकार मुरलियां जो अंत में चली, बाबा ने अपनी अंतिम पूर्ण स्थिति से चलाई साकार में। अब क्या जरूरी है? अब क्या जरूरी? भगवान ने सारे राज खोल दिए, सैकड़ों बार समझा दिया। अब क्या जरूरी है? अभ्यास करना। अब आवश्यक है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अभ्यास करना है, अनुभव करना है। अगर बाबा के सत्य ज्ञान को समझा है तो उसकी प्रैक्टिकल निशानी है अपने आप जीवन परिवर्तन होगा, बुराइयां छूटेगी, अच्छाइयां धारण होगी, आत्मा में सद्बुद्धि आती है, सद्विवेक आता है, हमें खुद समझ में आ जाता है अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्यों हमें कोई रोके टोके कहे? अगर हम समझ रहे हैं ये सत्य है तो धारण करना है ना, किसको पूछना है अब? हाँ, कौन सा मुहूर्त देखना है? देखना है कोई? मुझे ही निर्णय करना है ना। पर अभी भी वो आदतें, वो संस्कार, वो विकार अभी भी नहीं छूट रहे हैं, इसलिए करता हूं, देखता हूं, करता हूं, टाइम पास करते रहते हैं। टाइम पास नहीं करना है, हमें लक्ष्य पूर्वक चलना है। ऊंचा लक्ष्य बनाने के बाद सिंसियरिटी चाहिए। आज कहा ना बाबा ने, गंभीरता का गुण चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। परिपक्व बन के सोचो अब हमारा जीवन कैसा हो। जो करना चाहिए वो ही करें, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करे, उसको योगी कहते हैं। वो है योगी जिसका सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है, विल पावर है। भक्ति में भावना थी, श्रद्धा थी, इच्छा भी थी, पापों से छूटे, मुक्ति को पाए, पर सही ज्ञान नहीं था, सच्चा गाइड नहीं था, झूठे गुरु मिले, सबने और ही उलझा दिया, भटका दिया। सत्य बता नहीं पाए, अपनी अपनी मतें दी और ही मामला बिगड़ गया। और वो समय द्वापर कलियुग, उतरती कला का समय। अब सतगुरु मिला है, सच्चा गाइड मिला है, सत्य ज्ञान मिला है, और ये चढ़ती कला का समय। अब अपने आप से पूछो, मेरी इच्छा क्या है? मुझे संपूर्ण बनना है कि नहीं बनना है? पूछो, भट्टी में आए हो ना, यहां फुर्सत है, बाबा के घर में बैठे हो। पूछो अपने आप से, क्या लक्ष्य है? हमारी तपस्या का, हमारे इस अध्यात्म मार्ग का फाउंडेशन आत्मभिमानी स्थिति है। जड़ बॉडी कॉन्शियसनेस ही सभी विकारों की जड़ है। एक ही भूल द्वापर युग में हुई,
खुद को भूल गए, ये सबसे बड़ी भूल है। फिर भूलों पर भूलें होती गई, संसार जीवन ही भूल भुलैया बन गए। मनुष्य ने सोच लिया कि मानव मात्र भूल के पात्र, ऐसा समझ लिया। कहां हम अभूल थे, निर्विकारी थे, संपूर्ण थे, वो सत्यता ही भूल गई। वो नहीं जानते थे भक्ति में इस मूल राज को, नहीं जानते थे, इसलिए कितनी मेहनत की उन्होंने, घरबार छोड़े, जंगलों में जाकर बैठे। भैया थोड़ा फास्ट, गर्मी लग रहा है। देह दमन किया, कितना कष्ट सहा, लगन तो थी ना उनकी, तपस्या करनी है, पापों से छूटना है, कर्म बंधन से मुक्त होना है, लगन थी, सत्य नहीं जानते थे, कितनी मेहनत की। हमें तो कोई मेहनत नहीं है, हमें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, कोई दुनिया नहीं छोड़नी है, कोई हठ दमन नहीं करना है। हमें तो समझना है, महसूस करना है और परिवर्तन करना है। इसलिए सबसे पहली डिटैचमेंट देहभान से चाहिए। देहभान से अटैच हुए, फिर देह संबंधों से हुए, देहधारियों से हुए, वैभव पदार्थों से हुए, पर रूट कॉज कौन सा है? देहभान। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते ये अभ्यास चाहिए। मैं इनसे अलग हूं, मैं ये नहीं हूं, ये मिट्टी है, ये तत्व है, ये जड़ है, मैं तो शक्ति हूं, चैतन्य हूं, ज्योति हूं। खुद को डिटैच करो। बाबा ने समझा दिया, प्रैक्टिस करना हमारा कर्तव्य। आत्मस्मृति पहला अभ्यास। बाबा मुरली में समझाते हैं ना, बच्चे मैं इस मुख द्वारा बोल रहा हूं, तुम इन कानों द्वारा सुन रहे। ये अभ्यास मन ही मन हमें करना है। सुनने में ये बातें सिंपल लगती हैं, पर ये मूलभूत बातें हैं, मुख्य बातें। कई समझते हैं ये कॉमन पॉइंट है, रोज बाबा कहते आत्मभिमानी बनो, आत्मभिमानी बनो, दसों बार कहते, ये कॉमन पॉइंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए भगवान दसों बार हमें कहे। ये व्यक्तिगत हमें अटेंशन रख के अभ्यास करना, नहीं तो टाइम ऐसे ही पास हो जाता है, संगम के अंत में आ गए। देखते देखते टाइम बीत गया, अव्यक्त बाप दादा का पार्ट भी संपन्न हो गए, ऑलमोस्ट सब दादियां आदि रत्न चले गए एडवांस में। जो हमें बल देने वाले थे, जो पावरफुल रिसोर्सेस थे, जो हमें एम्पावर करते थे, वो तो एडवांस में चले गए। अब हमें खुद जागना है, हरेक में खुद में अवेयरनेस आनी चाहिए। जब तक आत्मभिमानी नहीं, योगी नहीं, बाबा से लगन लगेगी नहीं। सिर्फ भान, कॉन्शियसनेस चेक करो, आईने में देखते हैं कौन सी कॉन्शियसनेस चेक करने की बातें हैं, अटेंशन देना है। स्नान करते हैं कौन सी कॉन्शियसनेस, बिल्कुल भूल जाते। भोजन करते हैं कौन सी कॉन्शियसनेस, हमें देह भान को भूलना है पर देह को संभालना भी। हमें शरीर को स्वस्थ शक्तिशाली रखना है तो खाना भी है, पर डिटैच होके कर रहे हैं। रस और स्वाद में तो नहीं डूब रहे। मैं ये नहीं कहती हूं कि माताएं ऐसा वैसा खाना बना दे, नहीं, व्यवस्थित भोजन बनाना है, पर मुझे उसमें अटैच नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू में पता है ना, आत्मभिमानी बनने के लिए बाबा लिखते थे, मैं आत्मा हूं। जसोदा आत्मा है बाबा की, धर्म पत्नी का नाम। नारायण आत्मा है बाबा के बेटे का नाम। राधिका आत्मा है बाबा की पुत्रवधु। देह संबंध का भान, देह दृष्टि मिटाने के लिए बाबा ये लिखते थे। हमें भी अभ्यास करना है। हम पवित्र रहते हैं परंतु अभी भी देह संबंधों का भान है, मैं पति हूं, मैं सास हूं, ये बेटी है, ये बेटा है, ये पुत्र वधु है। क्यों अंतर करते हैं? क्योंकि आत्मदृष्टि रही। प्रैक्टिकल में हम आत्मभिमानी नहीं। आत्मदृष्टि का अभ्यास, आप जिससे भी मिलें, जिसको भी देखें, जिससे भी बातचीत करें, मस्तक में देखें, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। हर मुलाकात को स्पिरिचुअलाइज्ड करो, रूहानी बनाओ। हमें लौकिक दैहिक दृष्टि से नहीं मिलना है, हमें रूहानियत से मिलना है। हम हर कर्म आत्मधर्म में स्थित होकर करें, ये तीसरा अभ्यास। आत्मभिमानी बनना चाहते हैं, आत्मभिमानी स्थिति की निशानी है आत्मधर्म में स्थित होकर कर्म करना। देहभान के कारण देह के जाति ज्ञाति भाषा प्रांत धर्म के कितने भेदभाव। अगर अभी भी जाति ज्ञाति ऊंच नीच के भेदभाव नहीं, सच्चा मानव माना पवित्र योगी ब्राह्मण हम आत्माएं, हमें जाति ज्ञाति के भेदभाव नहीं है। हाँ, हर आत्मा स्वच्छ हो, पवित्र हो, जो बाबा ने हमें सिखाया। हमारा आत्म धर्म कौन सा है? शांति और पवित्र। जो हमारे असली गुणधर्म है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये हमारी ओरिजिनलिटी, ये हमारी रियलिटी है। मेरे अनादि स्वरूप में विकार थे ही नहीं, अब मुझ में ना हो कोई भी विकार, क्योंकि वापस अनादि स्थिति में जाना है। तो लक्ष्य रखें, मुझे हर कर्म शांति से, पवित्रता से, निस्वार्थ भाव से, ज्ञान स्वरूप बनकर कर। आत्मभिमानी स्थिति की निशानी है बुद्धि सही परखेगी, सही निर्णय करेगी। एक बच्चे ने बाबा से पूछा कि बाबा मित्र संबंधी बहुत आग्रह करते हैं, भोजन खिलाने के लिए बहुत आग्रह करते हैं, होटल में ले जाते हैं, बाबा मैं क्या करूं। बाबा ने बच्चे को जवाब दिया, बच्चे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वही तो रोज बाबा समझाते हैं। रोज कौन सा भाषण बाबा करते यही तो समझाते हैं, फिर भी बच्चा पूछ रहा है मैं क्या करूं। इसका अर्थ है बच्चे को सूक्ष्म में खाने की दिल है, तभी तो पूछ रहा है, वरना बाबा ने तो कह दिया है ना कि नहीं खाना है, बात पूरी हो गई। तो इसको आत्मभिमानी नहीं कहेंगे, शुद्ध बुद्धि रहे। मैं बाबा की याद में ही टीवी देखती हूं, अब इसको कहेंगे सही। एक और बात बाबा से ही बच्चे ने पूछी कि बाबा आपने कहा कि कच्चा अगर बायोस्कोप माना समझे ना, पहले फिल्मों को बायोस्कोप कहते, बायोस्कोप देखेंगे तो माथा ही खराब हो जाएगा, ऐसे बाबा ने मुरली में समझाया। तो एक बच्चे ने पत्र लिखा ब्रह्मा बाबा को कि बाबा आज आपने ये कहा कि कच्चा अगर बायोस्कोप देखे तो माथा खराब हो जाएगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी, पर पक्के तो देख सकते हैं ना, अब इसको क्या कहेंगे। बाबा ने इतना अच्छा जवाब दिया कि पक्के को ऐसी गंदगी देखने की इच्छा ही नहीं। ये है आत्मभिमानी स्थिति की निरीक्षण कि जब आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर सोचेंगे, राइट परखेंगे, राइट डिसीजन है। इसलिए हमें तीन चीजें करनी है, देखो जो एक मैंने बताई कि अब इस जन्म में मुझे नए पाप नहीं करने, मेरा ऐसा सेल्फ कंट्रोलिंग हो, कर्मेंद्रिय से विकर्म ना हो। मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे मनसा में कितने भी तूफान आवे, कर्मेंद्रियों से पाप नहीं करना। ब्राह्मण आत्माओं में वो शक्ति इतनी होनी चाहिए कि कर्मेंद्रिय से भूले ना हो, उसमें आत्मभिमानी स्थिति चाहिए। जिस क्षण खुद को भूल जाते हैं, भूले होते हैं। जन्म जन्मांतर से किए हुए विकर्म भस्म करने हैं, योग तपस्या चाहिए। योग तपस्या चाहिए, अपने शुद्ध स्वरूप को बार बार रियलाइज करो कि मैं आदि अनादि परम पवित्र शुद्ध आत्मा। किए हुए विकर्मों का हिसाब किताब जो संस्कार के रूप में आत्मा में समाया हुआ है, वो संस्कारों को योग बल से बदलने हैं। बार बार विकार के वश होकर विकारी संस्कार बने, अब बार 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 अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होकर सदा पावन बाबा को याद करते हुए हमें तपस्या से हिसाब किताब चुकाने हैं। और कल परसों ही बाबा ने बताया, आप सबने भी सुनी होगी मुरली, कि बाप के साथ धर्मराज भी है। इस जीवन में किए हुए पाप बाबा को बताकर हल्के बन जाओ, बाबा आधा माफ कर देगा। ज्ञान से पहले परख नहीं थी, सद्बुद्धि नहीं थी, भूले कि पाप हुए, महसूस भी नहीं करते थे, परंतु अब तो समझते हो ना कि इस जन्म में ज्ञान से पहले ज्ञान के बाद भी जो भी पाप किए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश, वो सच्चाई से बाबा को लिख के दे दो। हम हल्के हो जाएंगे और बाबा की ये स्पेशल ऑफर है, हमें माफ कर देंगे। तो आत्मभिमानी बनना, बाबा की लगन में मगन होना, देहभान से डिटैच डबल लाइट बनना सहज हो जाएगा। जब तक हम सच्चाई से बाबा को नहीं बताएंगे, जब जब योग में बैठेंगे वो पाप मन में सामने आएगा, दिल को खाएगा। इसलिए बाबा को बता के हल्के हो जाएं, तो जो हमारा पुरुषार्थ है, हम नेचुरल आत्मभिमानी बन जाएं, वो स्थिति ला सकते हैं, कर सकते हैं। बाबा के कमरे में देखा है ना लेटर बॉक्स, सिर्फ बाबा से मदद नहीं मांगनी है, अपनी सच्चाई बाबा को बता देनी है। ओम शांति।
शक्ति स्वरूप।